खुद खुदा से डरना और खुदा की खिदमत करना है। मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 1 से 11 आयत। उस वक्त रू यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताएं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब संतलतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदा की रास्तबाजी जो हमें हमारे गुनाहों से बचाती है, कि यीशु ने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया, यानी उसने खून बहाया और हमें एक ही बार हमेशा के लिए हमारे गुनाहों से बचाने की खातिर सलीब पर मर गया, और यानी खुदा ने गवाही दी कि वो निजात दहिंदा था। आज के सहायफ हवाला में एक ऐसा वाक्या के बारे में है जो दरिया यर्दन में यीशु के फौरन बाद वाक्या हुआ। यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद वो बियाबान में शैतान के हाथों से आजमाया जाने के लिए रूह के वसीला से ले जाया गया। और क्योंकि वो 40 दिन 40 रात तक रोजा रखने के बाद भूखा था, अबलीस ने यीशु को 3 आजमाइशों के साथ आजमाने की कोशिश की। पहली आजमाइश, अबलीस की पहली आजमाइश आयत 3 में लिखी हुई है, और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। 40 दिन 40 रात रोजे रखने के बाद यीशु कितना भूखा हो सकता था। जब यीशु का बदन इंतहा तक भूखा था तो अबलीस ने उसे खाने के साथ आजमाया, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए, तब तुम उन्हें खा सकते हो। उन्हीं रोटियां बनाने का हुक्म दो, तब तुम जिंदा रह सकते हो। क्या तुम मरने की नौबत तक भूखे नहीं हो? और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तुम इस तरीके से जिंदा रह सकते हो। तूने 40 दिन तक रोजा रखा और तूने यकीनन मरने तक भूखा है, तो कितना ज्यादा खाना चाहता है। लेकिन इस बयान में यहां क्या होगा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन्हें रोटियां बनाने का हुक्म दे सकता है और खा सकता है, क्या तू नहीं कर सकता? इस तरह खा और खा। जाहिरी तौर पर अबलीस यीशु को आजमा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यीशु खुदा का बेटा था। लेकिन अबलीस ने उसे भूखा खाने के साथ आजमाया। दूसरे लफ्जों में वो उसे उसकी जिस्मानी जिंदगी से आजमा रहा था। भूख से मरने की बजाय तुझे इन पत्थरों को रोटियां बनानी चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। अगर तू अब जिंदा रहना चाहता है तो तुझे जिस्म की रोटी की जरूरत है। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने खाने के लिए रोटियां बना सकता है, तब तू जिंदा रहेगा। बस ऐसा ही कर, यही कर। उसने यीशु को आजमाया जब वो बेहद भूखा था, जिस तरह आया वो जिंदा रहेगा सिर्फ अगर वो रोटी खा सकता है। ताहम यीशु ने यूं कहते हुए इस तरह इनकार किया, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। असल में प्यारे साथी मसीहों, किसी शख्स का जिस्म और जान किसी चीज पर जिंदा रहते हैं। क्या कोई शख्स अब्दी तौर पर रोटी पर जिस्म के लिए जिंदा रह सकता है? अब्लीस जिस्म के लिए जरूर रोटी के साथ यीशु को आजमा रहा था। वाकई हमें जिंदा रहने के लिए क्या ईमान रखना चाहिए? खुदावन ने फरमाया, लिखा है कि आदमी रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और यह सच है कि जब एक शख्स भूखा है वो सोचता है कि उसे जिंदा रहने के लिए रोटी खानी है, लेकिन हकीकत में किसी शख्स की जिंदगी खुदा के कलाम पर, ईमान पर इनसार करती है। अगर खुदा का कलाम दुनिया में नहीं था तो हमारी रूह और जिस्म मरने के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। खुदा ने फरमाया कि हमारे जिस्म और जान का कलाम पर ईमान के वसीला से जिंदा रहेंगे, जो खुदा के मुंह से सादर होता है। और ऐसा ही है क्योंकि खुदा का तहरीरी कलाम सच है, और हमारी जानें हमारे ईमान के वसीला से खुदा के कलाम पर जिंदा रह सकती हैं। खुदा के कलाम की वजह से जो जिंदगी के लिए खुराक है, अगर आप के और मेरे बदन और जानें अपनी मामूरी तक जिंदा रह सकती हैं। खुदा लोगों को अपना कलाम अता कर चुका है। कलाम के वसीला से वो खिलाता है, गुनाहों की माफी करता है और लोगों को जिंदा रहने की इजाजत देता है। खुदा के कलाम ने कायनात में तमाम चीजों को पैदा किया और हर चीज की इजाजत दी जो इस दुनिया में इंसान की जरूरत थी। इसी तरह क्योंकि खुदा का कलाम मौजूद है, हमारी जानें ईमान के वसीला से एक ही बार हमेशा के लिए गुनाह की माफी हासिल कर सकती हैं। खुदा का कलाम उस किस्म का कलाम है जो मुकम्मल तौर पर हमारे गुनाहों को मिटाता है। इसी तरह खुदा का कलाम सच्चाई का कलाम है जो हमें नूर की तरफ ले जाता है, और इसलिए सिर्फ वो जो उस पर ईमान रखते हैं जिंदा रह सकते हैं। हमें ये ईमान रखने की जरूरत है कि हम सिर्फ खुदा के कलाम पर ईमान रखने के वसीला से जिंदा रह सकते हैं। यह सच है। हमें यकीनन जानना चाहिए कि इंसान यूं जिंदा रहने के बजाय, क्योंकि हम जिस्म के लिए रोटी रखते हैं और खुदा के तहरीरी कलाम पर ईमान रखने के वसीला से जिंदा रहते हैं। हमारे खुदावंद खुदा के कलाम के बारे में हमसे बातें की। जो ही हम इस दुनिया में रहते हैं, हम अक्सर दफा अपनी आजमाइश, जाती आजमाइश में फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपने लालच में गिरफ्तार हैं। लोग सोचते हैं कि अगर हम पैसों की यकीनी मिकदार रखते हैं तो हम इस दुनिया में कसरत से जिंदा रह सकते हैं। बेशक ये काबिल समझ बात है, ताहम वो क्या है कि एक शख्स वाकई जिस तरह जिसके वसीला से जिंदा रहता है, किस हिसाब पर कोई शख्स जिंदा रहता है। कोई शख्स खुदा के तहरीरी कलाम पर ईमान रखने की वसीला से जिंदा रह सकता है। अगर कोई खुदा का कलाम मौजूद ना होता तो हमारे लिए खुदा पर ईमान रखना या खुदा से मिलना मुमकिन ना होता। एक शख्स तनहा जिस्म की रोटी पर जिंदा नहीं रह सकता। खासतौर पर रास्तबाज जिंदा रह सकते हैं सिर्फ अगर वो खुदा के कलाम से पकी तालीमात सुनते हैं। और एक शख्स तनहा जिस्म से बना हुआ नहीं है बल्कि इसी तरह जान और रूह से भी बना है। इसलिए सिर्फ अगर हम खुदा की हकीकी कलाम सुनते हैं तो हम जान के गुनाहों को हल कर सकते हैं और इसी तरह हम जिंदा रह सकते हैं। खुदा का कलाम पढ़ने और सुनने के वसीला से हमारी जान और बदन वजन हासिल करते हैं और हम कसरत से जिंदा रहते हैं। सिर्फ अगर हम गुनाह की माफ़ी की हकीकी कलाम सुनते हैं तो हम अपनी जान के गुनाहों की पाकीजगी हासिल कर सकते हैं। यह है क्यों हर कोई जिसने खुदा का हकीकी कलाम सुना उस पर ईमान रखने के वसीला से बदन और जान में जिंदा रह सकता है। अब्लीस अक्सर हर किसी को इन अल्फाज के साथ आजमाता है, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो इन पत्थरों को हुक्म दो कि रोटियां बन जाए, इन पत्थरों को रोटियां बनाओ और इन्हें खाओ। और अगर तुम खुदा के बेटे हो तो क्या मुमकिन नहीं होगा? क्या तुम भूखे नहीं हो? इसे करो, अगर तुम सिर्फ रोटी खाते हो तो जिंदा रहोगे, क्या तुम नहीं रहोगे? इस कीमत पर एक शख्स अगर वो एक दिन में 3 बार खाना खाता है और जखीरा में साल के 553 दिन के लिए काफी खुराक रखता है तो तकरीबन 70 या 80 साल तक जिंदा रहेगा। क्या कोई शख्स जिंदा नहीं रहेगा और नहीं मरेगा अगर सिर्फ वो खाना खाता रहे? यह अब्लीस हमें क्या बताता है? अब्लीस लोगों को यह बताता है, और बहुत सारे लोग बेवकूफ बनते हैं इसलिए गिर जाते हैं। लोग मौजूद हैं जो सोचते हैं इसलिए गिर जाते हैं, ये दुरुस्त है। मैं जिंदा रह सकता हूं अगर मैं सिर्फ इसे रखूं। हम सिर्फ जरूरी तौर पर पैसों के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि ये सोच के कि हम जिंदा रह सकते हैं अगर हम दुनियावी अशिया में बाज रखते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। हम सोचते हैं मैं जिंदा रह सकता हूं हत्ता कि खुदा के कलाम के बगैर नहीं मर सकता, تاہم یہ ایک بڑا غلط حساب کتاب ہے۔ حقیقت میں ہمارے بدن بھی خدا کے کلام کے بغیر مر جاتے ہیں۔ واقعی کوئی شخص روٹی کے ساتھ دنیاوی اشیاء کی کثرت یا جنسی خواہش سے زندہ نہیں رہ سکتا جس سے دنیا فرحت پاتی ہے۔ یہ ہے کیوں ہمیں احتیاط سے سننے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کیا فرمایا جب ابلیس نے اسے آزمایا؟ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ابلیس ہمیں آزماتا ہے جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہم فاقہ کش اور بھوکے ہیں، اور اسی طرح جب ہماری جان تھکی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے تم زندہ رہو گے صرف اگر تم روٹی رکھتے ہو، کیا تم نہیں رہو گے؟ اور انہیں پریشان کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور میں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کافی ملکیت رکھتا ہوں، تب میں زندہ رہوں گا اور نہیں مروں گا، حتیٰ کہ اگر میں خدا کا کلام بھی نہیں سنتا۔ لیکن ساتھی مسیح ہو، حتیٰ کہ جب ابلیس ہمیں اس طرح آزماتا ہے تو ہم تنہا روٹی کی وجہ سے زندہ نہیں رہتے بلکہ ہر کلمہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہم اسے اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اسے ذہن میں رکھیں گے کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے اگر ہم خدا کا کلام نہیں رکھتے۔ آپ زندہ نہیں رہ سکتے صرف اگر خدا کا کلام آپ کے دل میں ہے۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیا یہ اسی طرح ہے یا کیا یہ اس طرح نہیں ہے؟ یہ اسی طرح ہے۔ حقیقت کو مت بھولیں کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام موجود ہے، وجہ کہ بنی انسان اب تک وجود میں وجود رکھ چکے ہیں، اور یہ بھی ہے کیونکہ خدا کا کلام وجود رکھتا ہے۔ جب پانی اور روح کی خوشخبری دنیا کے آخر تک پھیلے گی اور ہمارا خداوند واپس آئے گا، اور جب وہ واپس آئے گا اس نے فرمایا وہ اس دنیا کو ختم کرے گا اور ایک نئی دنیا شروع کرے گا، یہ سب اس کے کلام کے مطابق مکمل ہوگا۔ پیارے ساتھی مسیحو، خدا کا کلام سچ ہے۔ یسوع ابلیس کی پہلی آزمائش کو یہ فرماتے ہوئے شکست دیتا ہے۔ اس نے جواب میں لکھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ جب ابلیس نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا، تاہم ابلیس ایسا شخص نہیں تھا کہ وہ اس پر رک جاتا۔ دوسری آزمائش، دوسری آزمائش آیت نمبر 5 میں ظاہر ہوتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ابلیس نے یسوع کو ہیکل کے کنگرے پر اسے اٹھا کر لے جانے کے وسیلہ سے آزمایا اور اسے اپنے آپ کو نیچے گرانے کے لیے کہا۔ اس نے خدا کا کلام اسی کے خلاف لیا، اور جب اس نے کہا کہ کیونکہ لکھا ہے کہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو ٹھیس لگے، پہلے تو تو میری آزمائش کا انکار کیا کیونکہ تیری تحریری کلام پر ایمان رکھتے ہوئے، کیا تم نہیں رکھتے؟ تب تمہیں وہی کرنا چاہیے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، تم ان الفاظ پر ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نیچے گرا دو۔ تحریری کلام کے مطابق خدا اپنے ہاتھوں سے اپنے فرشتوں کو تیرے لیے حکم دے گا اور وہ تمہیں ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تاکہ تمہارے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے جب تم اپنے آپ کو نیچے گراؤ گے، ابھی کوشش کرو۔ تب یسوع نے فرمایا یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے خداوند خدا کی آزمائش نہ کر۔ پیارے ساتھی مسیحوں، بعض اوقات ابلیس لوگوں کو خدا کا تحریری کلام استعمال کرتے ہوئے آزماتا ہے، تاہم یسوع نے فرمایا خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ ابلیس نے یسوع سے کہا یقیناً تم نہیں مرو گے، کیوں؟ ایسا ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو، یہ سچ ہے۔ यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इसलिए वो नहीं मरेगा। यीशु हम इंसानों से मुख्तलिफ है, ताहम अबलीस आजमाता है, लेकिन खुदा का तहरीरी कलाम फरमाता है, खुदा को मत आजमा। दूसरे अल्फाजों में हमें यकीनन खुदा को आजमाने की बजाय तहरीरी कलाम और खुदा पर ईमान रखने के वसीला से जिंदा रहना चाहिए। अक्सर लोग यीशु को आजमाते हैं। बहुत सारे मौके मौजूद हैं जब लोग खुदा को आजमाते हैं। मैंने इसे इस तरह किया, लेकिन क्यों खुदा ने मुझसे इस तरीके से पेश आता है? लेकिन अगर हम उससे महज खुदा पर ईमान रखा तो उसे आजमाने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम उसे आजमाने की अहलियत नहीं रखते और हमें यकीनन उसे आजमाना नहीं चाहिए। खुदा ऐसा शख्स नहीं है जिसे हमसे आजमाइश कबूल करनी चाहिए। वजह हम आजमाए जाते हैं क्योंकि हम अपने लालच में घसीटे जाते हैं, और ये इस वजह से नहीं क्योंकि हम खुदावन हमें आजमाता है कि हम आजमाए जाते हैं। कोई शख्स खुदा के खिलाफ इब्राहिम को एक मिसाल के तौर पर लेते हुए एतराजात उठा सकता है। ये सब क्या था कि खुदा ने इब्राहिम से अपना बेटा इजहाक कुर्बान करवाया? क्या खुदा इब्राहिम को देखने के लिए नहीं आजमाया रहा? आया वो ईमान रखता था या नहीं? लेकिन ऐसी सूरतयाल नहीं थी, ऐसा नहीं था कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया, बल्कि ऐसा है कि खुदा ने हमें यह अमल देखने की इजाज़त दी कि कितने यकीन से इब्राहिम ईमान रखता था, जो वाकई अपने दिल में खुदा पर ईमान रखता था, और कैसे वो अपने ईमान की बदौलत ईमान का बाप बन गया। प्यारे साथी मसीहों, हमें यकीनन खुदा के कलाम पर ईमान रखना चाहिए, हत्ता कि गो खुदा हम पर जाहिर नहीं है। हमें यकीनन खुदा के तहरीरी कलाम पर, खुदा के कलाम के तौर पर ईमान रखना चाहिए जो खुदा ने फरमाया। हम खुदा के कलाम पर ईमान रखने के वसीला से तजर्बा करते हैं कि खुदा का कलाम अपनी जामियत में पूरा होता है, इसलिए हमें यकीनन ईमान रखना चाहिए। अगर यह है कि खुदा का कलाम कैसा है, हमें यकीनन इस पर ईमान रखना चाहिए जिस तरह यह है, और कलाम पर अपने ईमान के मुतालिक हिलना नहीं चाहिए। कोई मायने नहीं रखता कैसे हालात और वाकयात हिलते और तब्दील होते हैं। अगर यह है खुदा का कलाम कैसा है तो यह सच है, और अगर यह पूरा नहीं होता जिस तरह खुदा का कलाम फरमाता है, तब मसला हमारी तरफ पड़ता हुआ है। यह है क्योंकि हम ईमान नहीं रखते। क्या हमारा ईमान काफी मजबूत नहीं है, यानी हमारा ईमान डगमगा रहा है? बाज औकात हम ईमान रखने वाले नजर आते हैं और बाज औकात हम नहीं नजर आते। मुख्तसर खुदा का कलाम के साथ मसला होने की बजाय ये हमारे ईमान के मसले की वजह से है कि वह इस तरह पूरा नहीं होता जिस तरह कलाम फरमाता है। खुदा उनके लिए अपने मौजे करता है जो वाकई ही खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं। तहम खुदा ने मुतलजल ईमान वालों को फरमाया उन्हें हत्ता के कुछ हासिल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। याकूब का खत उसका एक बाप उसकी सास से 8 आए थे। कोई मायने नहीं रखता हमारा ईमान कितना छोटा है, आया हम ईमान रखते हैं या नहीं। ईमान रखना ही वो है क्या हम हैं। हमें यकीनन ईमान रखना चाहिए और खुदा को नहीं आजमाना चाहिए। अगर हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं तो हम गुनाह की माफ़ी हासिल करते हैं, और ये हम पर पूरा होता है जिस तरह कलाम है। प्यारे साथी मसीहो, क्या आप ईमान रखते हैं? हाँ, आपके और मेरे लिए ये ईमान है जो खुदा के कलाम पर ईमान रखता है कि हम हैं। यह है क्योंकि खुदा किसी शख्स को बैरूनी जाहिरियत की बजाय उस शख्स के दिल को देखता है। खुदा देखता है कि आया वो ईमान रखता है, ईमान के मुताबिक पेश आता है और ईमान के वसीला से जिंदा रहता है। तहम इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको अभी खुदा को अपना मजबूत ईमान दिखाना है। हत्ता कि अगर आपका ईमान राय के दाने की मानिंद छोटा है, आपको उसके कलाम पर अपने ईमान का यूं कहते हुए इकरार करना है, मैं ईमान रखता हूँ, मेरा ईमान कम है, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ कि मैं तेरा जवाब का इंतज़ार करता हूँ क्योंकि मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, मैं तेरी पैरवी करता हूँ क्योंकि मैं तेरे वादे के कलाम पर ईमान रखता हूँ। खुदा हमारे दिलों में ऐसा मुस्तकिल और मजबूत ईमान देखता है जब अबलीस आपको और मुझे आजमाता है। हमें यकीनन उसके तहरीरी कलाम पर ईमान रखने के वसीला से बाज रहना चाहिए। तीसरी आजमाइश, सोम आयत नंबर 8 हमें बताती है, फिर अबलीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब संतलतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उसे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा और सिर्फ उसकी इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसकी इबादत कर। हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ खुदा को सजदा और उसकी इबादत करनी है। खुदा के और हमारे दरमियान क्या जरूरी है? हमें कैसे खुदा के सामने जिंदा रहना चाहिए? हमें खुदा से डरना चाहिए, उसकी परस्तिश करनी चाहिए, ईमान रखना चाहिए और उसकी पैरवी करनी चाहिए। अगर ये उसकी मर्जी है, और क्योंकि खुदा कलाम का खुदा है और कलाम के तौर पर वजूद रखता है, उस पर ईमान रखने के वसीला से हम कलाम पर ईमान रखते हैं और कलाम के मुताबिक उसकी फर्मा बरदारी करते हैं और ऐसे ईमान के साथ उसकी प्रस्तिश और पैरवी करते हैं। यह है कैसे हमें यकीनन उसके सामने रहना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा और सिर्फ उसी की इबादत कर। यह वो फर्ज है जो आपको और मुझे और तमाम बरीन इंसान को यकीनन खुदा की आंखों के सामने पूरा करना चाहिए। कुछ ज्यादा दूसरा नहीं है जो हम लोगों को करना है, कुछ ज्यादा दूसरा नहीं है जो हमें खुदा को मानने और अजीम खुदा पर ईमान रखने और फरमा बरदारी करने, सजदा करने, यकीन करने, पैरवी करने और खुदा खालिक की खिदमत करने के अलावा दूसरा अपनी पूरी जिंदगियों में करने की जरूरत है। यह हमारा तनहा फर्ज रवैया है, इसी तरह है। अबलीस यीशु को नहायत बुलंद पहाड़ पर ले गया और उसे दुनिया की सारी सल्तनतें और उसकी शान शौकत दिखाई। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और यह पहाड़ 8,848 मीटर ऊंचा है। उसे याद करना बेहद आसान है, क्या यह नहीं है? प्यारे साथी मसीहो, शायद अबलीस ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर दुनिया को दिखाया था। अबलीस ने यीशु से कहा कि वो उसे वो सब कुछ दे देगा जो उन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी से देखा, अगर यीशु उसे सजदा करे। अबलीस ने कहा कि अगर यीशु अबलीस पर खुदा होने का ईमान रखे और उसकी खिदमत और फरमाबरदारी करेगा तो वो सारी दुनिया दे देगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने फरमाया, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा और सिर्फ उसकी इबादत कर। वाहिद जिसे मुझे सजदा करने और इबादत करने की जरूरत है वो खुदा बाप और तू नहीं है। मुझे क्या सजदा और इबादत करना है? इस दुनिया की शान शौकत नहीं है। यह है यीशु ने क्या फरमाया, खुदा के सामने झुकना और खुदा की इबादत करना हमारी खुशी, हमारा इत्मीनान, हमारा सब कुछ है। खुदा की प्रस्तिश और इबादत करना एक शख्स के लिए हर चीज है। यह हमें क्या करना है? कुछ और करने के लिए नहीं है। इससे ज्यादा काबिल कदर और अच्छा कुछ नहीं है। खुदा के सामने सजदा करना, खुदा के हर कलमा को मानना और खुदा की इबादत करना, खुदा को बजाते खुद मानना, खुदा के सामने झुकने के अलावा क्या बेहतरीन चीजें मौजूद हैं? जिसने हमें अपनी मखलूक के तौर पर पैदा किया था, इसके अलावा क्या बेहतर जिंदगी हो सकती है? क्या इसके अलावा बेहतर शान शौकत हो सकती है? हम सिर्फ हलीमी से खुदा की परस्तिश करते और हम उसकी तमाम बरकतों के लिए और उसमें हर चीज के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हमारे लिए क्या बरकत है? यह है कि हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं और खुदा हमें आसमानी बरकात के साथ मसा करता है। जब हम उसके सामने झुकते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और पानी और रूह की खुशखबरी को फैलाते हैं, क्योंकि खुदा वाहिद है जो हमें हर चीज बख्शता है। वो हमारा सब कुछ है क्योंकि वो हमारा सब कुछ है, क्योंकि वो उनके लिए हर चीज है जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप जानते हैं कि खुदा के सामने झुकना एक बरकत है। हत्ता कि अब क्योंकि खुदावंद जिंदा है, हम शादमान और खुश हैं और हम जिंदा रहते हुए तमाम बरकतें हासिल कर रहे हैं क्योंकि खुदा मौजूद है। हम ऐसा दिल रखते हैं जो खुदा से डरता है। हम उसकी बरकत में उसके जलाल देख सकते हैं। क्या इब्लीस ने कहा कि वह हर चीज देगा अगर हम उसकी परस्तिश करें? जब उसने दुनिया की सारी सल्तनतें दिखाई, इस दुनिया में बहुत सारे आलीशान अशिया हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हम शायद उनकी शान व शौकत से आर्जी तौर पर मसरूर कुन हो सकते हैं, ताहम इब्लीस की परस्तिश नहीं कर सकते। हत्ता कि गो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों को खैर कर सकती हैं। अगर इब्लीस हमें दुनियावी माल के साथ आजमाता है और कहता है कि वो हमें दुनिया की हर चीज अता करेगा अगर हम उसके खुदा के तौर पर इबादत करते हैं, हमें यकीनन खुदा के तहरीरी कलाम के साथ उसे भगाना चाहिए। ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा और उसकी इबादत कर। हमें यकीनन उसे इसी तरह भगाना चाहिए। और हकीकत में इब्लीस हमें बहुत सारी चीजें नहीं दे सकता। इब्लीस ने यीशु को धौंस दी जिस तरह आया वो खुदा था और कहा, अगर सिर्फ तू मेरे सामने झुके तो मैं यहां सब कुछ दूंगा। लेकिन हकीकत में हर चीज का मालिक कौन है? ये यीशु है। प्यारे साथी मसीहो, कायनात में हर चीज किस से ताल्लुक रखती है? ये आप रास्तबाज हैं। कायनात में हर चीज किस से ताल्लुक रखती है? ये खुदा के बेटे हैं। ये है क्यों खुदा ने हमें वो लोग कहा जो आसमान की मीरास में लेंगे, और वो उन्हें बुलाता है जो नए सिरे से पैदा हुए हैं और आसमान को मीरास में लेंगे। ये कायनात विरासतों की है, तब वो कौन है? ये रास्तबाजों से ताल्लुक रखती है। ताम इब्लीस कहता है कि मेरे सामने झुको अगर तुम खुदा पर ईमान नहीं रखते, लेकिन मुझ पर ईमान रखो और मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें दुनिया में हर चीज दूंगा। हर एक तरीका है जो शैतान अक्सर इस्तेमाल करता है। शैतान ने मुझे एक दफा इसी तरह से तरीके से आड़े हाथों लिया। ये एक तरीका है जो उसने मुझ पर इस तरह हत्ता के मेरे यीशु पर ईमान रखने से पहले इस्तेमाल किया। इस तरीके से इब्लीस को तीसरे मरले में बाहर किया गया था। प्यारे साथी मसीहो, हमें खुदा की आंखों में कैसे जिंदा रहना चाहिए? हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की जरूरत है जो खुदा की परस्तिश करती और पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी इबादत करती। खुदा ने हमारे गुनाहों को, तमाम गुनाहों को, पानी और खून के वसीला से माफ किया, हमें पाक किया और अपने फर्जंद बना लिया, और हमें बरकत बख्शी, यानी हम खुदा की परस्तिश और खुदा की इबादत कर सकते हैं। हमें यकीनन खुदा का शुक्र करना चाहिए जिसने हमें निजात की बरकत बख्शी। ईमान के वसीला से उसकी परस्तिश और सारी जिंदगी उसकी इबादत करनी चाहिए। एहतियात से खुदा के कलाम पर गौर करें जिसने हमारे गुनाहों को पाक किया। खुदावंद ने अपने बपतिस्मा के वसीला से हमारे तमाम गुनाहों को उठाने, सलीब पर मसलूब होने और हमारे लिए गुनाहों की अदालत हासिल करने के वसीला से हमें पाक कर दिया। खुदावंद ने हमें बरकत बख्शी कि हम खुदा की परस्तिश और उसकी इबादत, यानी हमें पानी और खून के साथ पाक और साफ बनाने और हमें खुदा के लोगों के तौर पर लेने के वसीला से कर सकते हैं। किस किस्म की आजमाइश आपको और मुझे दबा रही है? आप कैसे इन आजमाइशों को भगाते हैं? यीशु ने तीन आजमाइशों की मार्फत हमें दुरुस्त जवाब दिया जिनका उसने आज के सहीफा हवाला में तजर्बा किया। उसने खुदा के कलाम पर अपने ईमान के साथ इब्लीस की आजमाइशों को दूर रखा। अगर हम उसे जवाब को समझते हैं, अपनी जिंदगियां उस पर ईमान रखते हुए गुजारते हैं, तो हम भी इन आजमाइशों को दूर भगा सकते हैं। अगरचे खुदा की परस्तिश करना एक बरकत है, तो भी हम इसे अच्छी तरह नहीं जानते। प्यारे साथी मसीहो, क्या आप सोचते हैं उसकी गैर मशरूत तौर पर इबादत करने की बजाय खिदमत करवाना बेहतर है? लेकिन ये एक नहायत अच्छी बात है कि आप और मैं खुदा की इबादत कर रहे हैं। प्यारे साथी मसीहों, खुदा की परस्तिश करना एक अजीम बरकत है। ये एक अजीम बरकत है कि हम उसकी परस्तिश करते हैं जो नहायत ही बुलंद मर्तबे पर है। क्या ये ऐसा है? क्या ये ऐसा नहीं है? ये ऐसा ही है। किसी भी कीमत पर हमें इस दुनिया में किसी की खिदमत करनी, और किसी की खिदमत करने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम खुदा की खिदमत नहीं करते तो हम अब्लीस की खिदमत करते हैं। यकीनन अगर हम अब्लीस की खिदमत नहीं करते तो हम लोगों की खिदमत करते हैं। किसी भी सूरत हाल में हमें फैसला करना है कि हमें किसके खादम बनेंगे। प्यारे साथी मसीहों, इन हालात के मातहत क्या यह अजीम बरकत नहीं है कि हम खुदा की खिदमत करते हैं? ताहम क्योंकि हम उसे जाने बगैर जिंदा रहते हैं। यीशु ने तीसरी आजमाइश कबूल की और हमें दुरुस्त जवाब बताया। तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। प्यारे साथी मसीहो, हमें यकीनन खुदा के कलाम पर ईमान रखना चाहिए। जो ही हम खुदा का कलाम सुनते और सोचते हैं, ओह यीशु ने हमें दुरुस्त जवाब बताए, इस तरीके से जिंदा रहना ठीक है। जो ही मैं खुदा की प्रस्तुति करता हूँ तो प्रस्तुति करना रास्त काम है, अगर ये खुदा का कलाम है। हत्ता कि गो मैं बाज़ औकात नौनक, बदतमीज, बेवकूफ, सहीफुल अकल की मानिंद हूँ, मैं ऐसा शख्स हूँ जो एक बड़ी बरकत है। मैंने सोचा मुझे किसी के पाबंद होने के बगैर अपने दिल की मर्जी के मुताबिक ये कहते हुए ये मेरी जिंदगी है जिंदा रहना चाहिए, लेकिन यह ऐसा नहीं था। अब मैं जानता हूं किस तरीके से जिंदा रहना अजीब है। खुदावंद में अपने मालिक के तौर पर शराकत करना और खुदा के खादम के तौर पर जिंदा रहना रास्तबाजी है। हमें यकीनन पानी और रूह की खुशखबरी की सच्चाई को समझना चाहिए और ईमान रखना चाहिए जो यकीन रखता है और बरकत याफ्ता होने की बदौलत जिंदा रहता है। अगरचे बाज़ औक़ात हम थोड़े बेवकूफ़ नज़र आते हैं जब हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन हकीकत में यह हक है कि आप और मैं खुदा की परस्तिश और खुदा की इबादत कर सकते हैं। आपको यकीनन जानना चाहिए कि यह एक अजीम मरात और आपकी जिंदगी के लिए रास्तबाज तरीका है। मैं हैरान होता हूं कि मैं क्या इबादत कर रहा हूं अगर मैं अब खुदा की इबादत ना करता। यकीनी तौर पर मैं उन जमीन के मबूदों की इबादत कर रहा होता जो मुझे जिस्मानी ख्वाहिश दे सकते हैं। मैं हर रोज परेशान होते हुए कि कैसे जिंदा रहना है, मैं जमीन के मबूदों की इबादत करते हुए खा पी रहा होता। हर किस्म का नशा मेरे मबूद होते, मैं उन चीजों को पकड़ते हुए जिंदा रह रहा हूं। प्यारे साथी मसीह हूं, यीशु हमें नए सिरे से पैदा कर चुका है और हमें बताया किस किस्म की जिंदगी हमें गुजारनी चाहिए और किस किस्म का ईमान हकीकी दुरुस्त ईमान है। अगरचे हम कम और कमजोर हैं, हम वो नहीं हैं जो पहले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुदावंद का शुक्र करते हुए जिसने हमें बरकत बख्शी कि हम निजात याफ्ता हो सकें, खुदा को मान सकें, खुदा की प्रस्तुति कर सकें। आप खुदावंद के लिए शुक्रगुजार दिल रखते हैं क्या? आप नहीं रखते? हाँ, यह वाकई एक बरकत है जिसके लिए नहायत शुक्रगुजार हैं। यीशु ने हमें तमाम आजमाइशों को दूर करने की बदौलत यह ईमान बख्शा। ईमान रखना कि कोई आदमी खुदा के कलाम की वजह से जिंदा रहता है। ईमान रखना कि हमें यकीनन खुदा को नहीं आजमाना चाहिए। ईमान रखना कि खुदा की प्रस्तुति करना, सारी जिंदगी खुदावंद की इबादत करना रास्तबाज काम है। खुदा हमें ईमान बख्शता है जो कि एक अजीम बरकत है। हमें यकीनन ईमान रखना चाहिए और जिंदा रहना चाहिए, और जो ही हम सारी जिंदगी खुदा की प्रस्तुति और इबादत करते हैं। यह है कैसे हमें जिंदा रहना चाहिए। प्यारे साथी मसीहो, क्या आप ईमान रखते हैं? हाँ, क्या आप ईमान रखते हैं कि यह रास्तबाजी है? हाँ, हमें यकीनन अपने दिलों में ईमान रखना चाहिए कि जिंदगी का रास्तबाज रास्ता है। ये क्या यही बरकत है कि हम रास्तबाज खुदा की प्रस्तुति कर सकते हैं? हत्ता कि गो हम कम पड़ जाते हैं, ये बरकत कितनी ही बड़ी है कि हमारे पास कलाम का खुदा है। हम खुदा के सामने शुक्रगुजारी पेश करते हैं। खुदा ने हम सबको ये रास्तबाज ईमान बख्शा। हम उम्मीद करते हैं कि खुदा इस दुनिया में हर किसी को ये रास्त ईमान बख्शता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी और मेरी जाने खुदा के कलाम पर ईमान रखने के वसीला से खुदा की तरफ से मुस्तकिल बरकत हासिल करेंगी। आमीन।